तब विष्णु कुमार मुनि महाराज अत्यंत वात्सल्य से परिपूर्ण होकर के, विचार करने की चीज है, अपनी तपस्या और साधना को छोड़ करके और अत्यंत वात्सल्य भाव से भरकर, सम्यक दृष्टि का लक्षण है, उसका गुण है ये। वे अपनी तपस्या को छोड़ करके पहले तो सीधे ही पहुंचे थे, तपस्या को बिना छोड़े मुनि अवस्था में ही, विक्रिया रिद्धि का उपयोग मुनि अवस्था में ही हो सकता है, छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि ही रिद्धि का प्रयोग कर सकता है, गुणस्थान गिरने पर रिद्धि का उपयोग नहीं होगा। साथ साथ अपन सिद्धांत को भी लगाते चले जाएं, प्रथमान योग की कहानी है। हालांकि पद्मराय और कोई नहीं थे, विष्णु कुमार मुनि महाराज के बड़े भाई थे, तो जाकर के पद्मराय को बुला के कहा कि क्या करते हैं आपके राज्य में और मुनियों पर उपसर्ग। तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, बलि इत्यादि मंत्रियों को 7 दिन के लिए राज्य दे चुका हूं। तब विष्णु कुमार मुनि महाराज अपना रूप विक्रिया के द्वारा बदलकर, हां उपयोग कर लिया विक्रिया का, विक्रिया का उपयोग करके अपना रूप बदलकर बटुक ब्राह्मण के रूप में उन मंत्री जो कि राजा बन बैठे थे उनके पास जाकर के याचना करते हैं कि मुझे कुछ आपके राज्य में जमीन चाहिए। वो उतने छोटे से बटुक ब्राह्मण को देख करके चकित हो जाता है कि मुश्किल से 1.5-2 फीट की तो हाइट है, इसको क्या चाहिए, मांगो विप्र, मांगो ब्राह्मण जो भी मांगना हो, 3 डग भूमि चाहिए। 3 डग, तुम्हारे 3 डग तो बहुत छोटे होंगे, किसी बड़े व्यक्ति को बुला लो उससे नपवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ही पर्याप्त हैं 3 डग, आप तो देना हो तो दो, नहीं तो मैं ये चला। हां तो घबरा गए हो कि ब्राह्मण को नाराज मत करो, तो कहा कि ले लो, तो उठाओ सौगंध। तो जैसे ही वे जल हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि दी हमने तुम्हें 3 डग भूमि, विष्णु कुमार मुनि महाराज अपनी पुनः विक्रिया के द्वारा 1 डग सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर, पूरा 45 लाख योजन का 2.5 दीप नाप लिया 2 डग में, और तीसरा पूरे आकाश में भ्रमण कर रहा है, ज्योतिष मंडल चमत्कृत हो गया, त्राही त्राही अर्थात रक्षा करो ऐसा स्वर देवों के द्वारा होने लगा। तब कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं, सबने क्षमा याचना की। कई लोगों ने इस घटना को यह कह दिया कि पैर पीठ पर रख दिया, मुनि महाराज हैं ये ध्यान रखिए, वो एक प्रतीक है कि तीसरा पैर कहां रखूं, हार मान लो, झुक गए सब और क्षमा याचना की, उपसर्ग टल गया। उपसर्ग टलने के बाद, देवों के द्वारा जय जयकार होने के बाद, अब सब मुनि महाराज आहार के लिए निकले। तब जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक हम सब श्रावकों का उपवास रहेगा, ये हस्तिनापुर के पद्मराय कहां के थे मुझे नाम आम याद नहीं रहा, हस्तिनापुर महाराज ने कहानी सुनाने के लिए और बोल दिया वो प्रथमान योग की। तो वहां पर सब श्रावकों ने यह तय किया था कि जब तक मुनियों का उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक उपवास से रहेंगे। उस दिन उपसर्ग टला तो सबके घरों में चौके लगे, 700 घरों में तो आहार हुआ 700 मुनि महाराज का, लेकिन जिनके घरों में मुनि महाराज नहीं पहुंचे उन लोगों ने, जिनके घरों में महाराज थे उन सबको अपने घर में निमंत्रित किया और रक्षा सूत्र बांध करके परस्पर एक दूसरे के प्रति धर्म वात्सल्य प्रकट किया। आज भी वैदिक परंपरा में दरवाजे के बाहर सोन बना करके, सोन कहीं कहीं पर प्रसिद्ध है, चित्र बनाए जाते हैं उनको पहले आहार देकर के फिर आहार किया जाता है, वो प्रतीक है मुनि महाराज का। सौन शब्द शावक का अपभ्रंश है। शावकों ने, एक शावक ने दूसरे शावक को भोजन कराया। किन शावकों ने? जिन शावक को यहां पर आहार नहीं हुआ था उन शावकों ने उनके लिए बुलाया जिनके यहां आहार हुआ था। ये परंपरा 18वें तीर्थंकर के समय से चली आ रही। आज भले ही अपन जिसके आहार हो जाता उससे ईर्ष्या करते हैं, पर उस समय लोग वात्सल्य करते थे कि आपके यहां पर मुनि महाराज गए, आप हमारे यहां पधारो। ये हम लोग नैनागिरी में किया करते थे, जहां आचार्य महाराज का आहार हो जाता था तो हमारे चौके में नहीं आते थे, तो हम उस चौके वाले को पकड़ के ले आते थे कि आप हमारे यहां झूम जीमो, तो वो कहता हमारा क्या होगा, हम आपका खा लेंगे आपके यहां जाकर के। लेकिन ये प्रेम, तो वो उस समय से ये प्रक्रिया चली आई। और रक्षा सूत्र बांधने की, सात तागे का रंग, सात रंगों का रक्षा सूत्र उस समय प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी परस्पर अपन लोग धारण करते हैं। देखा जाए तो अकंपनाचारी महाराज शुद्धोपयोग के प्रतीक हैं। उपसर्ग सहन करते हुए वे अपने आत्मा में लीन रहे। विष्णु कुमार मुनि महाराज हमारी धर्मानुराग की परिणति है, शुभोपयोग के प्रतीक हैं, जिन्होंने कि अपनी शुद्धोपयोग की दशा में स्थिर न रह करके जो शुद्धोपयोग में स्थिर हैं उन पर उपसर्ग आने पर अपने शुभोपयोग में स्थिर रह करके उनके उपसर्ग को टाला। और नमुची बलि बृहस्पति इत्यादि ये सब जिन्होंने उपसर्ग किया वो सब अशुभ उपयोग के प्रतीक हैं। ये हम अपने भीतर रोज इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम इसको बहुत प्रतीकात्मक ले लेवे तो चार कषायें ही चार मंत्री हैं। जब ये कषायें प्रबल हो जाती हैं तो साधना में बाधा आती है। कंपनाचारी जैसे साधकों के जीवन में बाधा आती है, यानी हमारी साधना में बाधा डालने वाली ये चारों कषायें हैं। और अकंपनाचारी तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जिसमें की श्रद्धा है, भक्ति है, विवेक है, वात्सल्य है, ये सारे सात गुण हैं। वो 700 मुनियों का संग है। आस्था के साथ ही संग बनता है। और देखा जाए तो पद्मराय हमारा पुरुषार्थ है। जब पुरुषार्थ कषायों के बशीभूत होकर के और निष्कासित कर दिया जाता है राज्य से, तब ये विपत्ति आती है। हमारी पुरुषार्थहीनता विपत्ति में कारण बनती है, अकेली कषायें नहीं है। कषायें तब हमारे ऊपर हावी होती हैं जब हमारी आत्मा सो जाती है, हमारा आत्म पुरुषार्थ ढक जाता है, तब जाकर के ये ऐसा उपसर्ग आता है। और विष्णु कुमार मुनि महाराज तो वात्सल्य के प्रतीक हैं ही, जो हमारे भीतर और हमारा धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है, आत्म जागृति होती है, तब जाकर के उपसर्ग टल जाता है। अगर हम देखें तो ये एक पूरी घटना, एक बात आध्यात्मिक अर्थों में भी आज भी हमारे जीवन में हम घटित होती हुई देख सकते हैं। इसको सलूना पर्व कहते हैं। सलूना शब्द सलोना शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द है। सलोना यानी सुंदर। आज का दिन इतना पवित्र था, इतना सुंदर था कि जब मुनि महाराज का उपसर्ग टला, उन्होंने आहार ग्रहण किया, देने वालों को आहार दान का सौभाग्य मिला, ये सब चीजें बहुत सुंदर और सलोनी हैं। इसलिए सलूना पर्व भी इसके लिए कहा गया। ये दैन दर्शन के अनुसार आज के पर्व का बहुत बड़ा महत्व हम लोग मनाते हैं। हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रखी हुई राखी अपने हाथ से बांध लेते हैं। और बताइएगा, भगवान तो अपने हाथ में राखी बांधेंगे नहीं कि हमारी रक्षा करो। और भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी भगवान की राखी बांध रहे हैं। भगवान की राखी बांधने का मतलब है कि भगवान आप हमारी रक्षा करते रहना। हाँ, आपकी रक्षा हम क्या करेंगे, हमारी रक्षा हम कर सकें आपके माध्यम से, आप हमारी रक्षा में निमित्त बनते रहना। रक्षा काहे से करना है भैया, राग द्वेष से, संसार के प्रपंच से, तो रक्षा कौन करेगा, वीतरागता ही रक्षा करेगी राग द्वेष से। तो सो वो वीतरागता मेरी रक्षा करती रहे, वो संयम की राखी है, संयम मेरी रक्षा करता रहे। और इसीलिए आज भी वर्तमान में मुनि जनों के संयम के उपकरण में या कि शास्त्र में रक्षा सूत्र रखने का या कि बांधने की परंपरा भी है, ताकि संयम हमारी रक्षा कर सके। जिन वाणी हमारी रक्षा कर सके, भगवान के सामने राखी बांधने का भी उद्देश्य यही है कि वीतरागता के द्वारा ही हमारी रक्षा होगी। तो ये देवगुरु शास्त्र के प्रति भी हम उनके सम्मुख रक्षा सूत्र बांध करके यही भावना भाते हैं कि हम राग द्वेष से अपनी रक्षा करते रहें, इन कषायों से हमारी रक्षा होती रही रहे। इसलिए ये पर्व अपन लोग मनाते हैं। पर्व तो सब हमारे जीवन को संदेश देने आते हैं। हमने एक दिन और आपसे कहा था कि जैसे गन्ने की दो गठानों के बीच रस वाला भाग होता है जिसे हम पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में राग द्वेष की संसार की गांठों के बीच अगर रस वाला हिस्सा है तो वो पर्व का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोगों को तो पर्व के मायने सिर्फ ये है कि बढ़िया बढ़िया सी चीजें खाने को मिलेंगी घर में, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, और खूब घूमने मिलेगा। अपन ने तो पर्व के मायने यही मान लिए, लेकिन पर्व के मायने इतना ही नहीं है। पर्व तो आनंद के लिए है, लेकिन सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं है, वो आत्म आनंद के लिए है। आत्म सुख प्राप्त करने के लिए मैं पर्व के दिन कोई ना कोई व्रत नियम संयम इत्यादि और धारण करूं, जिससे कि मुझे वो सुख मिल सके, वास्तविक सुख जो है। अपन बाहर के ही छोटे मोटे सुखों में उलझ के रह जाते हैं कि हाँ आज तो पर्व का दिन है, जरा इंटरटेन करेंगे। नहीं, इंटरटेन करना भी है तो एंजॉय करना भी है। तो अपने राग द्वेष से बच करके जो व्रत नियम इत्यादि हैं उनको ग्रहण करके एंजॉय करना चाहिए, उससे अपने पर्व का दिन सार्थक बनाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं भारतीय संस्कृति में इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं कि कैसे बहन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए और भाई को रक्षा सूत्र भेजा, और भाई ने भी जो है उस रक्षा सूत्र की, उस विश्वास की रक्षा करी। कोई किसी की रक्षा नहीं करता भैया, होती तो है सिर्फ विश्वास की रक्षा, बाकी तो जिसके जैसे साता साता का उदय है उसके अनुसार ही जीवन चलेगा। लेकिन हम तो सिर्फ जो हमारे भीतर विश्वास है उसकी रक्षा करते हैं। बहुत बड़ी एक लड़ाई में, और दो मित्र थे और उनकी बैरक अलग अलग बनी हुई थी, वो अलग अलग खंदकों में छिप करके और शत्रु से युद्ध कर रहे थे उतने में, और एक मित्र को दूसरे की कराह बहुत तेजी से आवाज सुनाई पड़ी और बुलाने की आवाज सुनाई पड़ी कि अब मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, अगर हो सके तो तुम मुझसे मिलो। वो अपने जो भी वहां पर कमांडर रहते हैं उनसे पूछता है कि मैं जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि सबको संकट में डालते हो, इतना युद्ध का अवसर है और वहां तक पहुंचोगे कैसे, और अब तक तो वो मर चुका होगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, और बिना आज्ञा लिए हुई लुढ़कता हुआ रात के अंधेरे में, और वो वहां तक पहुंचा, और पहुंच करके थोड़ी ही देर में अपने मित्र से मिलकर के वापस लौटा। तो उसके ऑफिसर ने पूछा उससे कि क्या हुआ, मैंने कहा था ना व्यर्थ में गए तुम, वो तो मर ही गया। उसने कहा मेरे पहुंचने तक तो जिंदा था, वो मर गया ये बिल्कुल ठीक है, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसके विश्वास की रक्षा की, उसकी सांसें सिर्फ इस बात के लिए अटकी थी कि मैंने आवाज दी है तो मेरा मित्र आएगा, वो मुझे बचा नहीं पाएगा ये तय है, लेकिन आएगा ये सबसे बड़ा विश्वास है। हरिवंश राय बच्चन ने इस विश्वास पर 4-8 लाइनें लिखी हैं। रात की हर सांस करती है प्रतीक्षा, द्वार कोई खटखटाएगा, दिवस का मुझ पर नहीं कर्ज बाकी रह गया है, जगत के प्रति भी न कोई फर्ज बाकी रह गया है, जा चुका जाना जहां था, आ चुके आना जिन्हें था, इस उदासी के अंधेरे में बता मन कौन आकर मुस्कराएगा, रात की हर सांस करती है प्रतीक्षा, द्वार कोई खटखटाएगा। ये प्रतीक है कि दिन तो बीत गया है, रात है वो भी मृत्यु के निकट पहुंच गया हूं, मेरे ऊपर अब संसार का कोई भी ऋण शेष नहीं रह गया है, मरने वाले पर कोई ऋण शेष नहीं रहता संसार का, एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए, आ चुके आना जिन्हें था, जा चुका जाना जहां तक था, मेरी यात्रा जितनी थी मैं कर चुका, जिन्हें मेरे से मिलने आना था सब सामने खड़े हैं, अत्यंत उदास हैं, लेकिन इस उदासी के अंधेरे में भी बता कौन आकर के मुस्कराए। वो सिर्फ मैं जानता हूं मेरी श्रद्धा, और मैं बलिहार उस पर जो ना आया, और आने का समय दिन भी नहीं जिसने बताया, और सारी जिंदगी भी गुजर गई जो ना आया, किंतु उठ पाता नहीं विश्वास मन से वो कभी चुपचाप आएगा। ये है विश्वास, जो एक बार हमारे मन में जागृत होता है तो कहते हैं कि श्रद्धा एक बार होने के बाद फिर जीव संसार में ज्यादा नहीं भटक सकता, संसार से पार हो जाए। ये विश्वास की रक्षा का दिन है। अगर हम इसको वात्सल्य का पर्व माने तो वो तो है ही, लेकिन हम देखें कि हमारे भीतर की जो आस्था है उसने ही तो इस सब चीजों से हमें बचा लिया, इस उपसर्ग से भी हमारी आस्था ने ही बचाया, हम भी अपनी उस आस्था को निरंतर बढ़ाते चले जाएं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो हमारा श्रद्धान है वो आज के दिन हमारा और अधिक मजबूत होना चाहिए, और परस्पर साधर्मी के प्रति भी हमारे मन में वात्सल्य होना चाहिए। भाई बहन के बीच वात्सल्य तो अब बहुत कम देखने में आता है, अब तो रिश्तों के बीच की जो पवित्रता है वो भी धीरे धीरे करके खंडित हम ही अपने हाथ से करते चले जा रहे हैं। अब किसी पर सहसा विश्वास नहीं होता कि ये भाई कह रहा है तो सचमुच भाई की तरह मेरे जीवन में मुझे रक्षा करेगा, और ऐसा विश्वास सहसा किसी पर अब तो नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन स्थिति है। फिर भी इस दौर से गुजरने के बाद भी आज भी है जो कि कुछ शेष है, जो शेष है वो विश्वास ही शेष है। इस सब के बावजूद भी जहां अविश्वास और विश्वासघात की प्रबलता है वहां भी विश्वास की ज्योति आज भी जो है जगती है। मैं वो घटना हमेशा इस अवसर पर सुनाता हूं, बच्चों के भीतर आज भी संस्कार अगर हम डालें विश्वास के और संबंधों की पवित्रता के, तो आज का दिन उसी विश्वास और संबंधों की पवित्रता का दिन है। सिर्फ एकमात्र मनुष्य है, देवों में कोई संबंध बनाए नहीं जाते, वो सदा बने हुए हैं। भोग भूमि के मनुष्यों को कोई संबंध नए निर्मित नहीं करना होते, वे युगल के रूप में जन्म लेते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। नारकी जीव संबंध बनाते नहीं है, उनके संबंध सिर्फ द्वेष के होते हैं। पशुओं में संबंधों की समझ ही नहीं है, सिर्फ एकमात्र मनुष्य है जिसने संबंध बनाए हैं। एक बार किसी को मां कह के देखिएगा और भीतर में आने वाली पवित्रता का एहसास करिएगा। एक बार किसी को पिता कह के देखिएगा और भीतर बरसने वाली श्रद्धा को देखिएगा, विनय को देखिएगा। एक बार किसी को बेटा या बेटी कह के देखिएगा, बहन कह के देखिएगा, देखिएगा कि मन में क्या होता है। क्यों बनाए होंगे ये संबंध बनाने वाले ने, इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ कितना बड़ा संस्कार रहा होगा कि बेटी कहते ही साथ और मन के अंदर क्या होने लगता है बताइए मुझे। जैसे कि प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि ढेर सारा प्यार दे देना है, कुछ भी शेष नहीं रखना, अपने अपने पास सब कुछ दे देना, जबकि जबकि जन्म नहीं दिया हो सकता है, फिर भी ये शब्द अपने आप में कितना कीमती बन गया होगा, किसने बनाया होगा मैं तो सोचता हूं। और उसके पीछे इतनी सारी भावनाएं कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी तब बनी होगी, उस शब्द में इतनी वजनदारी आई होगी, उस शब्द के कहते ही साथ इतना मन में पवित्रता आती। आज मेरी बहन आएगी, आज मेरा भाई आने वाला है, ये क्या चीज, ये कहां से आ गया होगा, ये हमने कैसे इन संबंधों की पवित्रता को कायम किया होगा। आज भले ही हम उन सबको उतना निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सतही हम निर्वाह करते हैं, करते भी हैं तो सतही, क्योंकि हमारा बजट ना गड़बड़ा जाए, बहन से मिलेंगी तो भी बजट गड़बड़ाने की चिंता रहेगी, तो ये देख करके करना पड़ रहा है, जबकि वहां पर कहीं कोई बजट गड़बड़ाने जैसा कुछ देने लेने का भाव नहीं था कि कोई बहुत सारे पैसे देगा या कि कोई बहुत सारी चीजें देगा तो ही वो अपनी बहन के प्रति भाई अपना स्नेह व्यक्त कर पाएगा, नहीं, वहां तो सिर्फ एक अंतरंग आत्मीयता है, उसके लिए साधर्मी के प्रति भी ऐसा ही भाव, भाई बहन के प्रति भी ऐसा ही भाव। हमने संबंध इतने सारे बना लिए जिससे कि पवित्रता ही पवित्रता बनी रहे, किसी से हमारे मन में द्वेष भाव ना आए। ये संबंध हमारे देश को घटाने वाले, हमारे धर्मानुराग को बढ़ाने वाले संबंध, आज का दिन भी ऐसे ही पवित्र संबंधों का दिन है। मैं आपको विदिशा की घटना सुना रहा था, हमेशा सुनाता हूं, अब तो वो गुड़िया बहुत बड़ी हो गई। वो समय पर मुश्किल से 4-5 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ में इसी रक्षाबंधन के दिन में हॉल में बैठा था, परमागम मंदिर है वहां पर, उसमें मैं बैठा हुआ था चतुर्मास में। तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, राखी कोई पीछी से बांध रहा था, कोई बाजोटे से बांधता था, कोई किताब में रख रहा था, सब अपने अपने तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, नियम ले रहे थे। तो माता पिता ने भी बेटी को कहा कि वो राखी ली थी हाथ में, बांध दो, तुम भी बांध दो। अब मैं अपनी किताब को ऐसे लिए हुए और आराम से पढ़ रहा हूं, मेरा हाथ इसी पोजिशन में रखा हुआ है और मैं अपने पढ़ने में लगा हूं, और उतने में जो है उसको तो राखी जैसे बांधी जाती वैसे बांधेगी वो, अब उसे और बाकी तो मालूम नहीं है। तो मुझे तो तब मालूम पड़ा, एहसास तब हुआ जब उसने की मेरे हाथ पर राखी रखने के बाद इसको पलटा बांधने के लिए। बाकी जो लोग बैठे थे वे सब हड़बड़ा गए। किस बात से हड़बड़ा गए बोलो, किस बात से हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ, भीतर कुछ हुआ होगा तब तो। हाँ मैं तो ऐसा बोलता हूं, भीतर विकार आया होगा आपके, तब तो इस प्रक्रिया में विकार दिख गया आपको कि ये क्या किया, छू लिया महाराज को, महाराज को प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा जिस जिसका मन गंदा हुआ वो करे, ना उसका हुआ ना मेरा, जिसका हुआ हो वो करे। लेकिन वो उसके लिए जीवन भर के लिए चीज हो गई, मेरे जीवन में भी जीवन भर याद रहेगी वो चीज, कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी उसने। अब तो 1992 से आज 12 साल हो गए, अभी भी लेकिन उसे याद है, उसके माता पिता आज भी याद करवाते हैं कि ध्यान रखना तुमने किसके हाथ पर राखी रख दी थी, धर्म की रक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, रोज मंदिर जाना, रात में भोजन नहीं करना, कहीं भी रहो। आज भी उसे हर वर्ष याद दिलाते हैं रक्षाबंधन पर। बताइएगा एक छोटी सी चीज ने व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, लेकिन कोई आज ऐसा जानबूझकर करे तो संभव नहीं है, अब तो वो फॉर्मेलिटी औपचारिकता कहलाएगी। लेकिन उसने कितने सहज भाव से कर दिया, वैसी ही सहजता। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि क्या इतनी ही सहजता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारे मन में है, अपने साधर्मी के प्रति इतना ही सहज पवित्रता का संबंध हमारे साधर्मी से है, होना चाहिए। अपेत कैतवा, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, और अगर हमारे संबंध हम बनाए तो वे संबंध भी हमें परंपरा से निर्वाण में कारण बन सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी हम अपने जीवन में करते हैं वो सब हमारे जीवन में परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। आज का दिन हम चाहें तो इस तरह मना सकते हैं, अपना धर्मानुराग व्यक्त करके मना सकते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में कलुषता है हम उस कलुषता को हटा करके अपने उस साधर्मी के वात्सल्य भाव को भी अपने जीवन में व्यक्त कर सकते हैं। हम भगवान के सामने अपने जीवन को संयमित बनाने की, मुनिजनों के सामने, मां जिनवाणी के सामने अपने जीवन को संयमित बनाने की चाहें तो आज के दिन और कोई संकल्प भी ग्रहण कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारी सच्ची देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है वो जीवन भर बनी रहे। इसी भावना के साथ कि हम सब श्रद्धा और विश्वास के सहारे अपने जीवन में संबंधों को पवित्र बना करके अपने जीवन का उत्थान करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। तब विष्णु कुमार मुनि महाराज अत्यंत वात्सल्य से परिपूर्ण होकर के, विचार करने की चीज है, अपनी तपस्या और साधना को छोड़ करके और अत्यंत वात्सल्य भाव से भरकर, सम्यक दृष्टि का लक्षण है, उसका गुण है यह, वे अपनी तपस्या को छोड़ करके पहले तो सीधे ही पहुंचे थे, तपस्या को बिना छोड़े मुनि अवस्था में ही, विक्रिया रिद्धि का उपयोग मुनि अवस्था में ही हो सकता है, छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि ही रिद्धि का प्रयोग कर सकता है, गुणस्थान गिरने पर रिद्धि का उपयोग नहीं होगा। साथ साथ अपन सिद्धांत को भी लगाते चले जाएं, प्रथमान योग की कहानी है, हालांकि पद्म राय और कोई नहीं थे, विष्णु कुमार मुनि महाराज के बड़े भाई थे। तो जाकर के पद्म राय को बुला के कहा कि क्या करते हैं आपके राज्य में और मुनियों पर उपसर्ग। तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, बलि इत्यादि मंत्रियों को 7 दिन के लिए राज्य दे चुका हूं। तब विष्णु कुमार मुनि महाराज अपना रूप विक्रिया के द्वारा बदलकर, हां उपयोग कर लिया विक्रिया का, विक्रिया का उपयोग करके अपना रूप बदलकर बटुक ब्राह्मण के रूप में उन मंत्री जो कि राजा बन बैठे थे उनके पास जाकर के याचना करते हैं कि मुझे कुछ आपके राज्य में जमीन चाहिए। वो उतने छोटे से बटुक ब्राह्मण को देख करके चकित हो जाता है कि मुश्किल से 1.5-2 फीट की तो हाइट है, इसको क्या चाहिए, मांगो विप्र, मांगो ब्राह्मण जो भी मांगना हो, 3 डग भूमि चाहिए। 3 डग, तुम्हारे 3 डग तो बहुत छोटे होंगे, किसी बड़े व्यक्ति को बुला लो उससे नपवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ही पर्याप्त हैं 3 डग, आप तो देना हो तो दो, नहीं तो मैं ये चला। हां तो घबरा गए वो कि ब्राह्मण को नाराज मत करो, तो कहा कि ले लो, तो उठाओ सौगंध। तो जैसे ही वे जल हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि दी हमने तुम्हें 3 डग भूमि, विष्णु कुमार मुनि महाराज अपनी पुनः विक्रिया के द्वारा 1 डग सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर, पूरा 45 लाख योजन का 2.5 दीप नाप लिया 2 डग में, और तीसरा पूरे आकाश में भ्रमण कर रहा है, ज्योतिष मंडल चमत्कृत हो गया, त्राही त्राही अर्थात रक्षा करो, ऐसा स्वर देवों के द्वारा होने लगा। तब कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं, सबने क्षमा याचना की। कई लोगों ने इस घटना को यह कह दिया कि पैर पीठ पर रख दिया, मुनि महाराज हैं ये ध्यान रखिए, वो एक प्रतीक है कि तीसरा पैर कहां रखूं, हार मान लो, झुक गए सब और क्षमा याचना की, उपसर्ग टल गया। उपसर्ग टलने के बाद देवों के द्वारा जय जयकार होने के बाद अब सब मुनि महाराज आहार के लिए निकले। तब जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक हम सब श्रावकों का उपवास रहेगा, ये हस्तिनापुर के पद्मराय कहां के थे, मुझे नाम आम याद नहीं रहा, हस्तिनापुर महाराज ने कहानी सुनाने के लिए और बोल दिया वो प्रथमानी योग की। तो वहां पर सब श्रावकों ने यह तय किया था कि जब तक मुनियों का उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक उपवास से रहेंगे। उस दिन उपसर्ग टला तो सबके घरों में चौके लगे, 700 घरों में तो आहार हुआ 700 मुनि महाराज का, लेकिन जिनके घरों में मुनि महाराज नहीं पहुंचे उन लोगों ने जिनके घरों में महाराज थे उन सबको अपने घर में निमंत्रित किया और रक्षा सूत्र बांध करके परस्पर एक दूसरे के प्रति धर्म वात्सल्य प्रकट किया। आज भी वैदिक परंपरा में दरवाजे के बाहर सोन बना करके, सोन कहीं कहीं पर प्रसिद्ध है, चित्र बनाए जाते हैं, उनको पहले आहार देकर के फिर आहार किया जाता है, वो प्रतीक है मुनि महाराज का। सोन शब्द श्रावक का अपभ्रंश है, श्रावकों ने, एक श्रावक ने दूसरे श्रावक को भोजन कराया। किन श्रावकों ने, जिन श्रावकों यहां पर आहार नहीं हुआ था उन श्रावकों ने उनके लिए बुलाया जिनके यहां आहार हुआ था। ये परंपरा 18वें तीर्थंकर के समय से चली आ रही, आज भले ही अपन जिसके यहां आहार हो जाता उससे ईर्ष्या करते हैं पर उस समय लोग वात्सल्य करते थे कि आपके यहां पर मुनि महाराज गए आप हमारे यहां पधारो। ये हम लोग नैनागिरी में किया करते थे, जहां आचार्य महाराज का आहार हो जाता था तो हमारे चौके में नहीं आते थे तो हम उस चौकी वाले को पकड़ के ले आते थे कि आप हमारे यहां झूम जीमो, तो वो कहता हमारा क्या होगा हम आपका खा लेंगे आपके यहां जाकर के, लेकिन ये प्रेम है। तो वो उस समय से ये प्रक्रिया चली आई और रक्षा सूत्र बांधने की, 7 तागे का रंग, 7 रंगों का रक्षा सूत्र उस समय प्रसिद्ध हुआ जो आज भी परस्पर अपन लोग धारण करते हैं। देखा जाए तो अकंपनाचारी महाराज शुद्धोपयोग के प्रतीक हैं। उपसर्ग सहन करते हुए वे अपने आत्मा में लीन रहे। विष्णु कुमार मुनि महाराज हमारी धर्मानुराग की परिणति है, शुभोपयोग के प्रतीक हैं, जिन्होंने कि अपनी शुद्धोपयोग की दशा में स्थिर न रह करके जो शुद्धोपयोग में स्थिर हैं उन पर उपसर्ग आने पर अपने शुभोपयोग में स्थिर रह करके उनके उपसर्ग को टाला, और नमुची बलि बृहस्पति इत्यादि ये सब जिन्होंने उपसर्ग किया वो सब अशुभ उपयोग के प्रतीक हैं। ये हम अपने भीतर रोज इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम इसको बहुत प्रतीकात्मक ले लेवे तो चार कषायें ही चार मंत्री हैं। जब ये कषायें प्रबल हो जाती हैं तो साधना में बाधा आती है। कंपनाचारी जैसे साधकों के जीवन में बाधा आती है, यानी हमारी साधना में बाधा डालने वाली ये चारों कषायें हैं। और अकंपनाचारी तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जिसमें कि श्रद्धा है, भक्ति है, विवेक है, वात्सल्य है, ये सारे सात गुण हैं। वो 700 मुनियों का संघ है। आस्था के साथ ही संघ बनता है। और देखा जाए तो पद्म राय हमारा पुरुषार्थ है। जब पुरुषार्थ कषायों के मजबूत होकर के और निष्कासित कर दिया जाता है राज्य से, तब ये विपत्ति आती है। हमारी पुरुषार्थहीनता विपत्ति में कारण बनती है। अकेली कषायें नहीं है, कषायें तब हमारे ऊपर हावी होती हैं जब हमारी आत्मा सो जाती है, हमारा आत्म पुरुषार्थ ढक जाता है, तब जाकर के ये ऐसा उपसर्ग आता है। और विष्णु कुमार मुनि महाराज तो वात्सल्य के प्रतीक हैं ही। जब हमारे भीतर और हमारा धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है, आत्म जागृति होती है, तब जाकर के उपसर्ग टल जाता है। अगर हम देखें तो ये एक पूरी घटना एक बहुत आध्यात्मिक अर्थों में भी आज भी हमारे जीवन में हम घटित होती हुई देख सकते हैं। इसको सलूना पर्व कहते हैं। सलूना शब्द सलोना शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द है। सलोना यानी सुंदर। आज का दिन इतना पवित्र था, इतना सुंदर था कि जब मुनि महाराज का उपसर्ग टला, उन्होंने आहार ग्रहण किया, देने वालों को आहार दान का सौभाग्य मिला, ये सब चीजें बहुत सुंदर और सलोनी हैं। इसलिए सलूना पर्व भी इसके लिए कहा गया। ये दैन दर्शन के अनुसार आज के पर्व का बहुत बड़ा महत्व हम लोग मनाते हैं। हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रखी हुई राखी अपने हाथ से बांध लेते हैं। और बताइए, भगवान तो अपने हाथ में राखी बांधेंगे नहीं कि हमारी रक्षा करो। और भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी भगवान की राखी बांध रहे हैं। भगवान की राखी बांधने का मतलब है कि भगवान आप हमारी रक्षा करते रहना। हाँ, आपकी रक्षा हम क्या करेंगे, हमारी रक्षा हम कर सकें आपके माध्यम से, आप हमारी रक्षा में निमित्त बनते रहना। रक्षा काहे से करना है भैया, राग द्वेष से, संसार के प्रपंच से, तो रक्षा कौन करेगा, वीतरागता ही रक्षा करेगी राग द्वेष से। तो सो वो वीतरागता मेरी रक्षा करती रहे, वो संयम की राखी है, संयम मेरी रक्षा करता रहे। और इसीलिए आज भी वर्तमान में मुनि जनों के संयम के उपकरण में या कि शास्त्र में रक्षा सूत्र रखने का या कि बांधने की परंपरा भी है, ताकि संयम हमारी रक्षा कर सके, जिनवाणी हमारी रक्षा कर सके। भगवान के सामने राखी बांधने का भी उद्देश्य यही है कि वीतरागता के द्वारा ही हमारी रक्षा होगी। तो ये देवगुरु शास्त्र के प्रति भी हम उनके सम्मुख रक्षा सूत्र बांध करके यही भावना भाते हैं कि हम राग द्वेष से अपनी रक्षा करते रहे, इन कषायों से हमारी रक्षा होती रही रहे। इसलिए ये पर्व अपन लोग मनाते हैं। पर्व तो सब हमारे जीवन को संदेश देने आते हैं। हमने एक दिन और आपसे कहा था कि जैसे गन्ने की दो गठानों के बीच रस वाला भाग होता है, जिसे हम पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में राग द्वेष की संसार की गांठों के बीच अगर रस वाला हिस्सा है तो वो पर्व का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोगों को तो पर्व के मायने सिर्फ ये है कि बढ़िया बढ़िया सी चीजें खाने को मिलेंगी घर में और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और खूब घूमने मिलेगा। अपन ने तो पर्व के मायने यही मान लिए, लेकिन पर्व के मायने इतना ही नहीं है। पर्व तो आनंद के लिए है, लेकिन सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं है, वो आत्म आनंद के लिए है। आत्म सुख प्राप्त करने के लिए मैं पर्व के दिन कोई ना कोई व्रत नियम संयम इत्यादि और धारण करूं, जिससे कि मुझे वो सुख मिल सके, वास्तविक सुख जो है। अपन बाहर के ही छोटे मोटे सुखों में उलझ के रह जाते हैं कि हाँ आज तो पर्व का दिन है, जरा इंटरटेन करेंगे। नहीं, इंटरटेन करना भी है तो एंजॉय करना भी है, तो अपने राग द्वेष से बच करके जो व्रत नियम इत्यादि है उनको ग्रहण करके एंजॉय करना चाहिए, उससे अपने पर्व का दिन सार्थक बनाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं भारतीय संस्कृति में इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं कि कैसे बहन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए और भाई को रक्षा सूत्र भेजा और भाई ने भी जो है उस रक्षा सूत्र की, उस विश्वास की रक्षा करी। कोई किसी की रक्षा नहीं करता भैया, होती तो है सिर्फ विश्वास की रक्षा, बाकी तो जिसके जैसे साता साता का उदय है उसके अनुसार ही जीवन चलेगा। लेकिन हम तो सिर्फ जो हमारे भीतर विश्वास है उसकी रक्षा करते हैं। बहुत बड़ी एक लड़ाई में और दो मित्र थे और उनकी बैरक अलग अलग बनी हुई थी, वो अलग अलग खंदकों में छिप करके और शत्रु से युद्ध कर रहे थे उतने में, और एक मित्र को दूसरे की कराह बहुत तेजी से आवाज सुनाई पड़ी और बुलाने की आवाज सुनाई पड़ी कि अब मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, अगर हो सके तो तुम मुझसे मिलो। वो अपने जो भी वहां पर कमांडर रहते हैं उनसे पूछता है कि मैं जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि सबको संकट में डालते हो, इतना युद्ध का अवसर है और वहां तक पहुंचोगे कैसे, और अब तक तो मर चुका होगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, और बिना आज्ञा लिए हुई लुढ़कता हुआ रात के अंधेरे में और वो वहां तक पहुंचा और पहुंच करके थोड़ी ही देर में अपने मित्र से मिलकर के वापस लौटा। तो उसके ऑफिसर ने पूछा उससे कि क्या हुआ, मैंने कहा था ना व्यर्थ में गए तुम, वो तो मर ही गया। उसने कहा मेरे पहुंचने तक तो जिंदा था, वो मर गया ये बिल्कुल ठीक है, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसके विश्वास की रक्षा की, उसकी सांसें सिर्फ इस बात के लिए अटकी थी कि मैंने आवाज दी है तो मेरा मित्र आएगा, वो मुझे बचा नहीं पाएगा ये तय है, लेकिन आएगा ये सबसे बड़ा विश्वास है। हरिवंश राय बच्चन ने इस विश्वास पर 4-8 लाइनें लिखी हैं। रात की हर सांस करती है प्रतीक्षा, द्वार कोई खटखटाएगा, दिवस का मुझ पर नहीं कर्ज बाकी रह गया है, जगत के प्रति भी न कोई फर्ज बाकी रह गया है, जा चुका जाना जहां था, आ चुके आना जिन्हें था, इस उदासी के अंधेरे में बता मन कौन आकर मुस्कराएगा। रात की हर सांस करती है प्रतीक्षा, द्वार कोई खटखटाएगा, ये प्रतीक है कि दिन तो बीत गया है, रात है वो भी मृत्यु के निकट पहुंच गया हूं, मेरे ऊपर अब संसार का कोई भी ऋण शेष नहीं रह गया है, मरने वाले पर कोई ऋण शेष नहीं रहता संसार का, एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए। आ चुके आना जिन्हें था, जा चुका जाना जहां तक था, मेरी यात्रा जितनी थी मैं कर चुका, जिन्हें मेरे से मिलने आना था सब सामने खड़े हैं, अत्यंत उदास हैं, लेकिन इस उदासी के अंधेरे में भी बता कौन आकर के मुस्कराएगा, वो सिर्फ मैं जानता हूं मेरी श्रद्धा, और मैं बलिहार उस पर जो ना आया, और आने का समय दिन भी नहीं जिसने बताया, और सारी जिंदगी भी गुजर गई जो ना आया, किंतु उठ पाता नहीं विश्वास मन से, वो कभी चुपचाप आएगा। ये है विश्वास, जो एक बार हमारे मन में जागृत होता है तो कहते हैं कि श्रद्धा एक बार होने के बाद फिर जीव संसार में ज्यादा नहीं भटक सकता, संसार से पार हो जाए। ये विश्वास की रक्षा का दिन है। अगर हम इसको वात्सल्य का पर्व माने तो वो तो है ही, लेकिन हम देखें कि हमारे भीतर की जो आस्था है उसने ही तो इस सब चीजों से हमें बचा लिया, इस उपसर्ग से भी हमारी आस्था ने ही बचाया, हम भी अपनी उस आस्था को निरंतर बढ़ाते चले जाएं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो हमारा श्रद्धान है, वो आज के दिन हमारा और अधिक मजबूत होना चाहिए और परस्पर साधर्मी के प्रति भी हमारे मन में वात्सल्य होना चाहिए। भाई बहन के बीच वात्सल्य तो अब बहुत कम देखने में आता है, अब तो रिश्तों के बीच की जो पवित्रता है वो भी धीरे धीरे करके खंडित हम ही अपने हाथ से करते चले जा रहे हैं। अब किसी पर सहसा विश्वास नहीं होता कि ये भाई कह रहा है तो सचमुच भाई की तरह मेरे जीवन में मुझे रक्षा करेगा, और ऐसा विश्वास सहसा किसी पर अब तो नहीं किया जा सकता। बहुत कठिन स्थिति है, फिर भी इस दौर से गुजरने के बाद भी आज भी है जो कि कुछ शेष है, जो शेष है वो विश्वास ही शेष है। इस सब के बावजूद भी जहां अविश्वास और विश्वासघात की प्रबलता है, वहां भी विश्वास की ज्योति आज भी जो है जलती है। मैं वो घटना हमेशा इस अवसर पर सुनाता हूं, बच्चों के भीतर आज भी संस्कार अगर हम डालें विश्वास के और संबंधों की पवित्रता के, तो आज का दिन उसी विश्वास और संबंधों की पवित्रता का दिन है। सिर्फ एकमात्र मनुष्य है, देवों में कोई संबंध बनाए नहीं जाते, वो स्वतः बने हुए हैं। भोग भूमि के मनुष्यों को कोई संबंध नए निर्मित नहीं करना होते, वे युगल के रूप में जन्म लेते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। नारकी जीव संबंध बनाते नहीं है, उनके संबंध सिर्फ द्वेष के होते हैं। पशुओं में संबंधों की समझ ही नहीं है, सिर्फ एकमात्र मनुष्य है जिसने संबंध बनाए हैं। एक बार किसी को मां कह के देखिएगा और भीतर में आने वाली पवित्रता का एहसास करिएगा। एक बार किसी को पिता कह के देखिएगा और भीतर बरसने वाली श्रद्धा को देखिएगा, विनय को देखिएगा। एक बार किसी को बेटा या बेटी कह के देखिएगा, बहन कह के देखिएगा, देखिएगा कि मन में क्या होता है। क्यों बनाए होंगे ये संबंध बनाने वाले ने, इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ कितना बड़ा संस्कार रहा होगा कि बेटी कहते ही साथ और मन के अंदर क्या होने लगता है बताइए मुझे। जैसे कि प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि ढेर सारा प्यार दे देना है, कुछ भी शेष नहीं रखना, अपने 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 पास सब कुछ दे देना, जबकि जन्म नहीं दिया हो सकता है। फिर भी ये शब्द अपने आप में कितना कीमती बन गया होगा, किसने बनाया होगा मैं तो सोचता हूं। और उसके पीछे इतनी सारी भावनाएं, कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी तब बनी होगी, उस शब्द में इतनी वजनदारी आई होगी, उस शब्द के कहते ही साथ इतना मन में पवित्रता आती। आज मेरी बहन आएगी, आज मेरा भाई आने वाला है, ये क्या चीज, ये कहां से आ गया होगा, ये हमने कैसे इन संबंधों की पवित्रता को कायम किया होगा। आज भले ही हम उन सबको उतना निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सतही हम निर्वाह करते हैं, करते भी हैं तो सतही, क्योंकि हमारा बजट ना गड़बड़ा जाए। बहन से मिलेंगी तो भी बजट गड़बड़ाने की चिंता रहेगी, तो ये देख करके करना पड़ रहा है, जबकि वहां पर कहीं कोई बजट गड़बड़ाने जैसा कुछ देने लेने का भाव नहीं था कि कोई बहुत सारे पैसे देगा या कि कोई बहुत सारी चीजें देगा तो ही वो अपनी बहन के प्रति भाई अपना स्नेह व्यक्त कर पाएगा। नहीं, वहां तो सिर्फ एक अंतरंग आत्मीयता है, उसके लिए साधर्मी के प्रति भी ऐसा ही भाव, भाई बहन के प्रति भी ऐसा ही भाव। हमने संबंध इतने सारे बना लिए जिससे कि पवित्रता ही पवित्रता बनी रहे, किसी से हमारे मन में द्वेष भाव ना आए। ये संबंध हमारे द्वेष को घटाने वाले, हमारे धर्मानुराग को बढ़ाने वाले संबंध। आज का दिन भी ऐसे ही पवित्र संबंधों का दिन है। मैं आपको विदिशा की घटना सुना रहा था, हमेशा सुनाता हूं, अब तो वो गुड़िया बहुत बड़ी हो गई। वो उस समय पर मुश्किल से 4-5 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ में इसी रक्षाबंधन के दिन में हॉल में बैठा था, परमागम मंदिर है वहां पर, उसमें मैं बैठा हुआ था चतुर्मास में। तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, राखी कोई पीछे से बांध रहा था, कोई बाजोटे से बांधता था, कोई किताब में रख रहा था, सब अपने अपने तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, नियम ले रहे थे। तो माता पिता ने भी बेटी को कहा कि वो राखी ली थी हाथ में, बांध दो, तुम भी बांध दो। अब मैं अपने किताब को ऐसे लिए हुए और आराम से पढ़ रहा हूं, मेरा हाथ इसी पोजिशन में रखा हुआ है और मैं अपने पढ़ने में लगा हूं, और उतने में जो है उसको तो राखी जैसे बांधी जाती वैसे बांधेगी वो, अब उसे और बाकी तो मालूम नहीं है। तो मुझे तो तब मालूम पड़ा एहसास तब हुआ जब उसने की मेरे हाथ पर राखी रखने के बाद इसको पलटा बांधने के लिए। बाकी जो लोग बैठे थे वे सब हड़बड़ा गए। किस बात से हड़बड़ा गए बोलो, किस बात से हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ? भीतर कुछ हुआ होगा तब तो। हाँ मैं तो ऐसा बोलता हूं, भीतर विकार आया होगा आपके तब तो इस प्रक्रिया में विकार दिख गया आपको कि ये क्या किया, छू लिया महाराज को। महाराज को प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा जिस जिसका मन गंदा हुआ वो करे, ना उसका हुआ ना मेरा, जिसका हुआ हो वो करे। लेकिन वो उसके लिए जीवन भर के लिए चीज हो गई, मेरे जीवन में भी जीवन भर याद रहेगी वो चीज। कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी उसने। अब तो 1992 से आज 12 साल हो गए, अभी भी लेकिन उसे याद है। उसके माता पिता आज भी याद करवाते हैं कि ध्यान रखना तुमने किसके हाथ पर राखी रख दी थी, धर्म की रक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, रोज मंदिर जाना, रात में भोजन नहीं करना, कहीं भी रहो। आज भी उसे हर वर्ष याद दिलाते हैं रक्षाबंधन पर। बताइएगा एक छोटी सी चीज ने व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन। लेकिन कोई आज ऐसा जानबूझकर करे तो संभव नहीं है। अब तो वो फॉर्मेलिटी औपचारिकता कहलाएगी, लेकिन उसने कितने सहज भाव से कर दिया। वैसी ही सहजता, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि क्या इतनी ही सहजता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारे मन में है? अपने साधर्मी के प्रति इतना ही सहज पवित्रता का संबंध हमारे साधर्मी से है, होना चाहिए। अपेत कैतवा, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के। और अगर हमारे संबंध हम बनाए तो वे संबंध भी हमें परंपरा से निर्वाण में कारण बन सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी हम अपने जीवन में करते हैं वो सब हमारे जीवन में परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। आज का दिन हम चाहें तो इस तरह मना सकते हैं, अपना धर्मानुराग व्यक्त करके मना सकते हैं। जिनके प्रति हमारे मन में कलुषता है, हम उस कलुषता को हटा करके अपने उस साधर्मी के वात्सल्य भाव को भी अपने जीवन में व्यक्त कर सकते हैं। हम भगवान के सामने अपने जीवन को संयमित बनाने की, मुनिजनों के सामने, मां जिनवाणी के सामने अपने जीवन को संयमित बनाने की चाहें तो आज के दिन और कोई संकल्प भी ग्रहण कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारी सच्ची देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है वो जीवन भर बनी रहे। इसी भावना के साथ कि हम सब श्रद्धा और विश्वास के सहारे अपने जीवन में संबंधों को पवित्र बना करके अपने जीवन का उत्थान करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।